समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है या है जन्मदिवस। तो श्रोताओं, परिक्रमा की संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो एंड गुड आफ्टरनून मुकेश, यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM and for you we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, business capsules, tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
बिल्कुल, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित।
लोकसभा रिफर्स बिल्स ऑन वन नेशन वन इलेक्शन टू जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत में अब तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों का निर्माण करके आत्मनिर्भरता के नए चरण की शुरुआत करने का समय।
यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अटेंड्स सशस्त्र सीमा बल 61st रेजिंग डे प्रोग्राम एट सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल।
राजस्थान में जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गैस टैंकर के कई वाहनों से टकराने के कारण लगी भीषण आग में 8 लोगों की मौत और 30 से अधिक घायल।
फॉर्मर हरियाणा चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला पासेस अवे इन गुरुग्राम।
और भारत ने अफ्रीकी देश लेसोथो के लोगों की खाद्य सुरक्षा तथा पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानवीय सहायता प्रदान की।
And now, Mukesh, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Children's Day and International Day for Human Solidarity.
बिल्कुल, बाल विश्व दिवस के बारे में अभिषेक हम ये कहना चाहेंगे कि बच्चों की बात क्यों सुनी जानी चाहिए। इन्हें सुनकर बच्चे सशक्त और गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये जुड़ाव बच्चों को सामान्य रूप से आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाने में सहायता करता है। बच्चों के विचार नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनके विचार केवल ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास अधिक प्रभावी कानून और कार्यक्रम हो जो उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं से संबंधित हों। बच्चों को परेशान करने वाली अधिकांश बातें जैसे गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी, वयस्कों के बीच किसी का ध्यान नहीं जाता है, यदि बच्चों की आवाज सुनी जाती है तो ऐसे मुद्दे उजागर हो जाते हैं जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 1954 में सार्वभौमिक बाल दिवस की स्थापना की गई थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की स्थापना की गई थी। और 20 नवंबर वो तारीख है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1989 में इसी तारीख को बाल अधिकारों पर सम्मेलन को भी अपनाया था। ये दुनिया भर में बच्चों के कल्याण और अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दिन है। ये दुनिया भर के बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने में हुई प्रगति का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करता है, साथ ही मौजूदा चुनौतियों और उन क्षेत्रों पर भी प्रकाश डालता है जहां अधिक काम करने की जरूरत है।
Yes, absolutely, Mukesh. And war and warfare have a significantly poor impact on childhood development. The day then draws attention to the needs of the most vulnerable and marginalized children groups, advocating for the safety and opportunities. And Universal Children's Day encourages individuals, organizations and governments to indulge in dialogue and take action towards improving the lives of children, ensuring that their rights are respected and their voices are heard. Each child deserves a childhood filled with endless possibilities. Celebrate them today. And now moving on to our next topic of the day, Mukesh, that is the International Day for Human Solidarity. Well, today is the International Day for Human Solidarity. The UN Millennium Declaration identifies solidarity as a fundamental value of the 21st century international relations. And following this, at the 2005 World Summit, the United Nations General Assembly declared December 20 as International Human Solidarity Day to promote solidarity in accomplishing the Millennium Development Goals and tackling global concerns. And the day also highlights the importance of diversity, accountability and collective action for a better world. It serves as a reminder for governments to uphold their commitments to international agreements and foster global cooperation.
बिल्कुल अभिषेक, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व एकजुटता कोष के निर्माण की भी घोषणा की। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करना है। इस दिन को मनाना दुनिया भर के देशों और व्यक्तियों के बीच एकजुटता की संस्कृति बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि एकता महत्वपूर्ण है। ये एकजुटता हमारी साझा मानवता और इस विचार को मान्यता देती है कि हम सभी एक वैश्विक समुदाय का हिस्सा हैं। ये गरीबी, भूख और जलवायु परिवर्तन जैसे जटिल मुद्दों से निपटने के लिए सहयोग और आपसी समझ की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। ये एकजुटता का सिद्धांत व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों को समान लक्ष्यों की दिशा में मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सामाजिक बाधाओं को दूर करने और असमानताओं को दूर करने के लिए ये सामूहिक प्रयास आवश्यक है। वैश्विक चुनौतियों के सामने एकजुटता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गरीबी, स्वास्थ्य संकट और पर्यावरणीय गिरावट जैसे मुद्दों पर समाज के सभी क्षेत्रों से एकजुट प्रतिक्रिया की जरूरत है।
Yes, Mukesh, and International Human Solidarity Day is a powerful reminder of a collective responsibility to support one another and work towards a better future for all. So, to round up a discussion on the Human Solidarity Day, listeners, fostering a spirit of solidarity can help us address the pressing challenges of our time and build a more inclusive and compassionate world. As we observe this day, let us recommit to the values of cooperation, understanding and mutual support that are essential for humanity's well-being.
और परिक्रमा कार्यक्रम में वक्त हुआ है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या कुछ विशेष है। तो अभिषेक, सबसे पहले विशाखापट्टनम चलें।
एब्सोल्युटली, एंड इंडियन नेवी सेकंड सर्वे वेसल शिप INS निर्देशक वाज कमीशन्ड बाय वाइस एडमिरल राजेश पेंधारकर, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड ऑन 18th ऑफ दिसंबर। वी हैव अ रिपोर्ट फ्रॉम अ कॉरेस्पॉन्डेंट।
Union Minister of State for Defence Sanjay Seth presided over the commissioning of INS Nirdeshak, the second survey vessel ship at the Naval Dockyard in Visakhapatnam on December 18th. Vice Admiral Rajesh Pendharkar, Flag Officer Commanding in Chief of the Eastern Naval Command, hosted the commissioning ceremony. The ship, which was constructed by the Garden Reach Shipbuilding and Engineers GRSE, Kolkata. INS Nirdeshak is a part of four ship series designed to advance India's maritime capabilities. It is the second vessel under the survey vessel large project. Project marked a significant stride in India's Atmanirbhar Bharat initiative with over 80% indigenous content. Navy is crucial to the defense industry, according to the Union Minister of State for Defense Sanjay Seth, who spoke at the event. He expressed his happiness that the Indian Navy is utilizing technology to create best survey vessel as part of Atmanirbhar Bharat. Indian Navy has been reinforced and significant improvements have been made in the defense industry since NDA alliance came to power. Indian Navy defends against foreign threats all the time. The movement of narcotics into Indian waterways from other nations is completely prevented by the Indian Navy. The survey vessel's primary mission includes conducting hydrographic surveys, assisting in navigation, and supporting critical maritime operations. And the second role involves functioning as a hospital ship and participating in humanitarian assistance and disaster relief missions. INS Nirdeshak inherits its legacy from its predecessor of the same name, which served the Indian Navy with distinction for over three decades before being decommissioned on December 19, 2014. INS Nirdeshak commissioning marks another milestone in India's journey towards self-reliance in maritime technology while bolstering the Navy's operational readiness and outreach. This is Satyanarayana for Parikrama from Visakhapatnam.
Aur Visakhapatnam se ab chalte hain Pune. महाराष्ट्र के सतारा जिले का एक गांव मान्याची वाड़ी राज्य का पहला सौर गांव बन गया है। साथ ही राज्य 90% सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता मनोज क्षीरसागर की रिपोर्ट।
बिजली के मामले में आत्मनिर्भर और राज्य का पहला सौर गांव बन चुके मान्याजीवाड़ी गांव की हर जगह प्रशंसा हो रही है। इससे अन्य गांव भी सौर ऊर्जा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मान्याजीवाड़ी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव है। इस गांव में बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या 102 है। इसमें 97 घरेलू उपभोक्ता, जल आपूर्ति और स्ट्रीट लाइटिंग के लिए एक एक उपभोक्ता तथा सार्वजनिक सेवा श्रेणी के दो उपभोक्ता शामिल है। गांव में बिजली की खपत औसतन प्रतिमाह 5,500 यूनिट तक है। ग्राम सभा में प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा योजना में गांव द्वारा 100% भागीदारी लेने का निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र वितरण कंपनी ने गांव में एक नया बिजली संयंत्र लगाकर इसकी क्षमता बढ़ाई। प्रत्येक घर पर 1 किलोवाट की सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने का निर्णय लिया गया और मात्र 1.5 महीने में गाँव के 102 बिजली कनेक्शन सौर ऊर्जा में परिवर्तित कर दिए गए। घरेलू बिजली खपत के अलावा जलपूर्ति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय के लिए अतिरिक्त सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित होने से गांव की सौर ऊर्जा क्षमता बढ़कर 109 किलोवाट हो गई है। इससे हर माह 13,000 यूनिट बिजली पैदा होगी। इसका मतलब है कि गांव बिजली के मामले में 100% आत्मनिर्भर हो गया है। इस बीच महाराष्ट्र राज्य 90% सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान में राज्य भर में 21,212 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के अनुबंध किए गए हैं। इससे कृषि क्षेत्र और किसानों को निर्बाध सौर ऊर्जा मिलेगी। वर्तमान में महावितरण कंपनी के पास सौर क्षेत्र से 7,500 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। पहले चरण में कंपनी ने विभिन्न कंपनियों को 9,000 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा के लिए अनुबंध दिए थे। इसके बाद दूसरे चरण में कृषि क्षेत्र के लिए लगभग 6,000 मेगावाट के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। महावितरण एक निजी कंपनी से सीधे 5,000 मेगावाट सौर ऊर्जा खरीदेगी। इस प्रकार राज्य में 20,000 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा स्थापित की जा चुकी है। राज्य में जलाशयों की सतह पर सौर ऊर्जा पैनल भी लगाए जा रहे हैं। इससे कृषि क्षेत्र और किसानों को निर्बाध सौर ऊर्जा मिलेगी और महाराष्ट्र देश में सर्वाधिक सौर ऊर्जा वाला राज्य बनने की राह पर है। परिक्रमा के लिए मनोज क्षीरसागर, पुणे।
Yes, and from Pune now we go over to Vijayawada, and arrangements are in full swing for the Bhavani Diksha Viramana spiritual event in Vijayawada, scheduled to be held from December 21st to 25th. And with an expected daily footfall of nearly 1 lakh devotees, authorities are taking steps to ensure smooth conduct and a spiritual experience for all. We have more on this from a correspondent, Satya.
District Collector Dr. G. Lakshmisa has directed officials to work in close coordination to avoid any inconvenience to devotees. An integrated command and control room has been set up to monitor activities around the clock. Modern drone technology will enhance security, while public addressing systems at 26 locations will guide devotees effectively. Sanitation and hygiene are being prioritized, with clean drinking water and uninterrupted power supply being ensured. Parking arrangements have been made at Pundami Ghat, Rajiv Gandhi Park and other key areas. Special facilities for women, including changing rooms and Kesha Khandana centers, are also being provided. To cater to health needs, 20 medical camps and 4 ambulances will be stationed across the venue. Safety measures at the ghats include lifeguards, boats and life jackets. Over 20 lakh laddu prasadams will be made available to devotees. Vijayawada Police Commissioner S.V. Rajashekhar Babu has outlined robust security and parking plans, while Temple EVO K.S. Ramarao confirmed temple arrangements. Officials from various departments are working together to ensure the event is a grand success. This is Satyanarayana for Parikrama from Vijayawada.
और विजयवाड़ा से अब चलते हैं रांची। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को केंद्र सरकार ने विस्तार देते हुए इसमें आयुष्मान व्यय वंदना योजना को भी जोड़ दिया है, तो सुनते हैं ये रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को केंद्र सरकार ने विस्तार देते हुए इसमें आयुष्मान व्यय वंदना योजना को भी जोड़ दिया है। इसके तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का अतिरिक्त टॉप अप कवर मिलने लगा है। रांची के तिरल ग्राम निवासी 71 वर्षीय बानी मुंडा को हाइपरटेंशन और हृदय से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हैं। खर्च की चिंता से बेफिक्र बानी मुंडा रांची के सदर अस्पताल में इस योजना के तहत अपना इलाज करा रहे हैं।
हमारे तिरल से उम्र होता 53 से 53 ना सुना लेने में कोई वजन कम करने में बहुत दिक्कत, थक जाते हैं, पैर दर्द होने लगे, सीने में भी दर्द होता है, जब तक फ्री इलाज हो रहा है। आयुष्मान कार्ड बनाए थे, आपको फ्री इलाज हो रहा है।
स्वास्थ्य विभाग के रांची जिला कार्यक्रम समन्वयक आशीष रंजन का कहना है कि उम्र की ढलान के साथ वृद्ध नागरिकों को जटिल और खर्चीली बीमारियां घेरे रहती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 29 अक्टूबर को आयुष्मान व्यय वंदना की शुरुआत की है।
टिकट काउंटर के बीच में बनाई हुई है, जहाँ पे कोई भी लाभार्थी 70+ या आम आकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं या वो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र प्रज्ञा केंद्र में जाकर इसका कार्ड बनवा सकते हैं। एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, हर प्रखंड में चाहे प्राइवेट निजी अस्पताल में कहीं पे भी मरीज जा रहा है, जो सूचीबद्ध निजी अस्पताल है वहां पे उनको निर्देश है कि जो मरीज जाते हैं उनको वो कार्ड बनवाया जाए। और इलाजरत की बात रही तो सभी अस्पताल पहले से ही सूचीबद्ध है और वो इलाज कर रहे हैं।
रांची सदर अस्पताल में मौजूद आयुष्मान मित्र सौरभ कुमार ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाना बेहद ही सरल है और किसी भी कार्य दिवस पर केवल आधार कार्ड के साथ लाकर इसे बनवाया जा सकता है।
70 साल से ऊपर वाले के लिए एक विशेष अभियान के जरिए आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, उसमें डॉक्यूमेंट केवल आधार कार्ड से बन रहा है। बहुत से सीनियर सिटीजन लोग आके आयुष्मान कार्ड बना के जा भी रहे हैं और जिनको जानकारी नहीं है उनके तक हम जानकारी भी पहुंचा रहे हैं।
आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड लगभग 2000 चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए उपचार प्रदान करता है। खास बात है कि यह पहले दिन से ही पहले से मौजूद बीमारियों को भी कवर करता है। कुल मिलाकर यह कार्ड कई मायनों में दूसरे स्वास्थ्य बीमा से बेहतर है। अब जरूरत है इसके पात्र नागरिकों को इससे जोड़कर उन्हें इसका लाभ दिलाने की। परिक्रमा के लिए रांची से शिल्पी।
और अभिषेक बताएं कि व्यापार जगत में क्या हलचल चल रही है।
डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस सेंसेक्स डिक्लाइंड अराउंड 1.5% टुडे आफ्टर द यूएस फेड सिग्नल द पेस ऑफ रेट कट्स कुड बी स्लोअर गोइंग अहेड। एट क्लोज 30 शेयर बीएसई सेंसेक्स स्लिप्ड 1176 पॉइंट्स और 1.49% टू 78,041 एंड द एनएसई निफ्टी 50 ड्रॉप 364 पॉइंट्स और 1.52% टू 23,587। इन द ग्लोबल क्रूड मार्केट ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 1.02% down at $72.14 per barrel, and WTI crude shed over 1% to trade at $68.64 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, the 24 carat gold was trading up at 75,960 rupees for 10 grams, while silver 999 fine is trading down at 86,720 per kilogram a short while ago.
और अगर खेलों की बात करें तो अपने श्रोताओं को बता दें कि नवी मुंबई में कल रात महिला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 60 रन से करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। भारतीय टीम ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 217 रन बनाए। महिला टीम का यह अब तक का सर्वाधिक स्कोर है। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 9 विकेट पर 157 रन ही बना सकी और राधा यादव ने भारत की ओर से 4 विकेट लिए।
यस, न्यू दिल्ली इज सेट टू होस्ट द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स एट द सिटीज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नेक्स्ट ईयर। इट विल बी द फर्स्ट टाइम द इवेंट विल बी हेल्ड इन इंडिया। द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स अनाउंस्ड यस्टरडे will take place from September 26th to October 5th. New Delhi 2025 will be the 12th edition of the championships and the fourth time it has been hosted in Asia, following Doha in 2015, Dubai in 2019 and Kobe in 2024. In addition, the Indian capital will also host the World Para Athletics Grand Prix for the first time next year. It is scheduled to take place from March 11 to 13th, also at the Jawaharlal Nehru Stadium. Now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे समाज और धर्म सुधारक गोविंद गुरु के योगदान के बारे में। उनका जन्म 20 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा राजस्थान में हुआ था। उन्हें गोविंद गिरी के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश भारत में भील समुदाय को विशिष्ट पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
गोविंद गुरु ने 1899 और 1900 के भीषण अकाल के दौरान भील समुदाय के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया और रियासतों द्वारा उन पर किए जा रहे अत्याचारों को उजागर किया। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया और शीघ्र इस बात को समझा कि शराब समाज में प्रचलित समस्याओं के मूल कारणों में से एक है। उन्होंने इस बुराई से लड़ने का फैसला किया और इसके लिए 1908 में भगत संप्रदाय की शुरुआत की।
गुरु के शिष्य शराब और मांस से परहेज रखते थे। उन्होंने स्वच्छ पद्धतियों को अपनाने और बंधुआ मजदूरी का विरोध करने सहित कड़े नियमों का पालन किया। गोविंद गिरी ने सुनत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर की रियासतों और ब्रिटिश जिले पंचमहल में जनजातीय समुदायों से बड़ी संख्या में अपने शिष्य बनाए।
उनके सुधार कई रियासतों को रास नहीं आए, क्योंकि शराब की दुकानों से राजस्व कम हो गया और मजदूर मिलना दुर्लभ हो गए। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर और दबाव बनाने के लिए उनकी पत्नी और बच्चे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 1913 में उन्हें बिना किसी मुकदमे के रिहा कर दिया गया और डूंगरपुर राज्य छोड़ने का आदेश दिया गया।
नवंबर 1913 में तत्कालीन ईडर राज्य के शासक द्वारा गोविंद गुरु को पकड़ने के प्रयास के बाद गुरु और उनके अनुयायियों ने मानगढ़ में एक सुरक्षा ठिकाना कायम किया। 17 नवंबर 1913 को रियासतों की सेना ने उन पर हमला किया, जिसमें कई भील मारे गए और गोविंद गिरी और उनके लेफ्टिनेंट धीरजी पुंजा को पकड़ लिया गया। गोविंद गिरी को शुरू में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई।
हालांकि उन्हें 1919 में हैदराबाद की जेल से इस शर्त पर रिहा कर दिया गया था कि वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। कई रियासतों में उनके प्रवेश पर रोक भी लगा दी गई थी।
गुरु की मृत्यु 30 अक्टूबर 1931 को गुजरात के वर्तमान पंचमहल जिले के लिंबड़ी के पास कामबोई में हुई थी। हम भारत के इस महान देशभक्त को नमन करते हैं।
हम स्वतंत्रता सेनानी वक्कम मजीद को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 20 दिसंबर 1909 को त्रावणकोर में हुआ था।
बचपन से ही मजीद अपने चाचा वक्कम मौलवी और साथ ही नारायण गुरु के समाज सुधार आंदोलन से आकर्षित थे। जब केरल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ तो मजीद उसके सूत्रधारों में सबसे आगे थे। वे त्रावणकोर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक निर्माताओं में से एक थे।
मजीद ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और कई महीनों तक जेल में रहे। जब स्वतंत्र त्रावणकोर का प्रस्ताव रखा गया तो मजीद इसके कट्टर विरोधी थे और उन्होंने इस कदम के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया। वे देश के विभाजन और पाकिस्तान आंदोलन के भी कट्टर विरोधी थे।
मजीद का कहना था कि केवल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी भारत ही जनता के दिल और आत्मा को एक साथ रख सकता है। जब आईएनए के नायक वक्कम कादिर को अंग्रेजों ने मौत की सजा सुनाई तो मजीद मद्रास सेंट्रल जेल में उनसे मिलने गए। मजीद ने ही फांसी से पहले कादिर का आखिरी पत्र उनके पिता को लाकर दिया था।
आजादी के बाद मजीद अंतिंगल निर्वाचन क्षेत्र से त्रावणकोर कोची राज्य विधानसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। वे वर्ष 2000 में अपनी मृत्यु तक मातृभूमि के लिए समर्पित रहे। हम इस महान राष्ट्रवादी को नमन करते हैं।
20 दिसंबर 1946 को करिवेलूर विद्रोह हुआ, जिसे किसानों द्वारा भूमि, भोजन और स्वतंत्रता के लिए मालाबार क्षेत्र में पहले बड़े आंदोलन के रूप में देखा जाता है। ये विद्रोह उन जमींदारों से लड़ने के लिए था जो भीषण भूखमरी के समय गांव से धान की तस्करी करना चाहते थे।
जब किसानों ने जमींदारों का विरोध किया तो उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं और 2 किसान मारे गए, जबकि कई अन्य घायल हो गए। ये करिवेलूर संघर्ष का परिणाम था कि किसानों को गांव में जमीन मिली, जो पहले केवल कुछ जमींदारों के पास ही थी। हम उन शहीदों को सलाम करते हैं।
और परिक्रमा कार्यक्रम में अब समय हो गया है उन व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं सिने अभिनेत्री नलिनी जयवंत को, आज उनकी पुण्यतिथि है। भारतीय सिनेमा की उन सुंदर अभिनेत्रियों में नलिनी जयवंत की गणना की जाती थी, जिन्होंने 50 और 60 के दशक में सिने प्रेमियों के दिलों पर राज किया। फिल्म काला पानी का ये गीत नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, इस गीत पर नलिनी जयवंत द्वारा किए गए अभिनय को कौन भुला सकता है। नलिनी जयवंत ने अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत 1941 में प्रदर्शित फिल्म राधिका से की थी, लेकिन अपने श्रोताओं को हम जो ये गाना है काला पानी का ये सुनवाना चाहेंगे। नलिनी जयवंत ने अभिनेता दिलीप कुमार, देवानंद और अशोक कुमार के साथ कई सफल फिल्में दी थीं और उनकी फिल्म का एक डायलॉग भी हम आपके लिए लेकर आए हैं।
अब मैं डाट रखा हूँ।
क्या मतलब?
अब मैं आपको गिरफ्तार करवाऊंगी, हवालात में बंद करवाऊंगी।
अच्छा,
दरोगा जी, मैं कैप्टन सुरेश की लड़की हूँ। ये आदमी चोर है, मेरी मोटर लेकर भाग रहा है।
लेकिन ये तो आपके साथ है।
साथ साथ कुछ नहीं, मैं इसे पकड़ कर लाई हूँ, इसे गिरफ्तार कर लीजिए।
फिल्म राधिका के बाद महबूब खान के निर्देशन में एक फिल्म रिलीज हुई बहन। इस फिल्म में नलिनी के साथ प्रमुख भूमिका में थे शेख मुख्तार, साथ में नन्नी सी मीना कुमारी जो बीबी मीना के नाम से इस फिल्म में बाल कलाकार थी। इस फिल्म में संगीतकार अनिल बिस्वास ने नलिनी जयवंत से चार गीत गवाए थे, लेकिन हम अपने श्रोताओं के लिए मुनीम जी फिल्म का ये गाना लेकर आए हैं।
गोरे गोरे ओ बाके छोरे कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी ओ बाके छोरी चाहे रोज बुलाया करो, गोरे गोरे ओ बाके छोरे कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी।
1950 के दशक में नलिनी जयवंत ने धमाकेदार वापसी की थी अशोक कुमार की फिल्म समाधि और संग्राम के साथ, और इस फिल्म ने कई ऊंचाइयां हासिल की थी, तो क्यों ना समाधि फिल्म का गाना भी सुना जाए।
Yes, and Upendra Kishore Ray Chaudhary passed away on this day in 1915. He was a Bengali writer, painter, and entrepreneur. One of the books he wrote is Chotoder Shera Bigyan Rachana Shankolon. He was a son-in-law and of reformer Dwarkanath Ganguly. He was also an entrepreneur, and he was the first person to introduce color printing in Bengal. And he started the first color children's magazine, Sandesh, in 1913. And Todd Phillips was born on this day in 1970. He's an American filmmaker. Phillips began his career in 1993 and directed films in the 2000s, such as Road Trip, Old School, Star Sky and Hutch, and The School for Scoundrels. He came to wider prominence in the early 2010s for directing the Hangover film series. In 2019, he co-wrote and directed the psychological thriller film Joker, based on the DC Comics character of the same name, which premiered at the 76th Venice International Film Festival, where it received the top prize, the Golden Lion. Joker went on to earn Phillips 3 Academy Award nominations for Best Picture, Best Director, and Best Adapted Screenplay, with his co-writer Scott Silver. His second, third, and fourth Academy Award nominations after also being nominated for Best Adapted Screenplay for Borat in the 79th Academy Awards.
और आज जयंती है मशहूर कथा, उपन्यास, नाटक और पटकथा लेखक रॉबिन शाह पुष्प की। आजीवन स्वतंत्र लेखक रहे रॉबिन शाह पुष्प की 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इनमें उपन्यास, कहानियां, कविताएं, लेख, नाटक और बाल साहित्य आदि शामिल हैं। अन्याय को क्षमा, दुल्हन बाजार जैसे उपन्यास, अग्निकुंड, घर कहां भाग गया कहानी संग्रह और फणीश्वरनाथ रेणु पर लिखी संस्मरण पुस्तक सोने की कलम वाला हीरा मन उनकी चर्चित कृतियां हैं।
Kylian Mbappe was born on this day in 1998. He's a French professional footballer who plays as a forward for La Liga club Real Madrid and captains the France national team. Regarded as one of the best players in the world, he is known for his dribbling, finishing and speed. And at international level, Mbappe made his senior debut for France in 2017 at the age of 18.
और प्रसिद्ध भारतीय नृत्य इतिहासकार, विद्वान और आलोचक सुनील कोठारी का जन्मदिन है। भारतीय नृत्य कलाओं की शिक्षा लेने के लिए से पहले सुनील कोठारी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने भरतनाट्यम, ओडिसी, छऊ, कथक समेत अन्य भारतीय नृत्य कलाओं पर 20 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं।
Christopher Mark Robinson was born on this day in 1966. He's an American musician. He founded the rock band The Black Crowes with his brother Rich Robinson in 1984. Let's listen into the band's hit track Remedy, and it's from the album The Southern Harmony and Musical Companion.
Baby, baby,
और प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्मदिन है। उन्होंने भरतनाट्यम तथा कुचिपुड़ी में ख्याति प्राप्त की थी। यामिनी कृष्णमूर्ति ने अपनी आत्मकथा ए पैशन फॉर डांस एक पुस्तक जारी की थी। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर। साथ ही आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी हमारे कार्यक्रम 24 घंटे सुन सकते हैं। नमस्कार।